जब कल हमने पढ़ा था कि हजरत प्यारे नबी के प्यारे प्यारे वालिद हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी जो टली थी, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्यारे नबी के वालिद कैसे इंसान थे। हजरत अब्दुल मतलब के 10 बेटे थे, उन 10 बेटों में कैसे माहौल में सब लोग जी रहे थे। अरब का जो माहौल था वो हर तरह की जो लगवियात थी उसमें मुंसलिक था, उसमें बिल्कुल मुलविस था। और उन उनमें प्यारे नबी के वालिद के किरदार के बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और हयाते तैयबा को देखते हैं सीरतुन नबी के हवाले से। ये अब्दुल मतलब के एक छोर 10 बेटे थे, मगर इनमें सबसे प्यारे, सबसे दिलकश और खूबसूरत प्यारे नबी के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला थे, जिनके जबीह करने के लिए बाप ने छुरी हाथ में संभाली थी। और चेहरा के एतबार से अबू लहब का चेहरा भी सुर्ख था। अबू लहब भी भाई थे ना, हजरत प्यारे नबी के चचा था ना, और सगा चचा था। और खूबसूरती में अबू लहब का चेहरा एकदम सुर्ख और सफेद, और सुर्खी बहुत ज्यादा थी। अबू लहब के चेहरे को बहुत सुर्ख बताया गया है। और किस तरीके से उसकी सुर्खी थी कि अंगारे की तरह लाल और भभूका था, जिसको देखकर तबीयत के अंदर उसको देख के उसकी खूबसूरती देख के है ना दिल मोहता नहीं था, बल्कि वहशत यानी कि एक ना सख्ती थी, और शोले की तरह उसकी ना लपक थी। अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला की सूरत में बल्ला की जाज़बियत थी और दिलकशी थी। इनकी पेशानी में एक अजीब चमक थी जो कुरैश के किसी नौजवान की पेशानी में नजर नहीं आती थी। उनका माथा सचमुच नूर का नूर चमकता था, जिसमें बहुत सी सुबहें मुस्कुराती थी। ये इसलिए था कि प्यारे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में अल्लाह ताला ने उतारा था। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा भागा भागा आया और अपने घर वालों से कहने लगा कि मैंने आज एक अजीब बात देखी, इसी के कहने के लिए मैं जंगल से बस्ती की तरफ आया हूँ। अभी थोड़ी देर हुई है कि मैं बकरियां चरा रहा था, अब्दुल मतलब का बेटा अब्दुल्ला हमारे करीब से गुजरा। सख्त धूप पड़ रही थी, मतलब बिल्कुल साफ था, सूरज की किरणें जिस्म को झुलस से देती थी। इतने में क्या देखता हूँ कि अब्दुल्ला के सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है और वो अबर पारा इसके साथ चल रहा है। दरअसल हजरत अब्दुल्ला के सर पर जो साया था वो प्यारे नबी के नूर की वजह से था, और हजरत अब्दुल्ला की रगों के अंदर जो अल्लाह ताला ने नस्ल को खून जो सिलसिला था वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से चला आ रहा था। लोग मुस्कुराने लगे कि चरवाहा खूब देख कर आया है या इसकी आंखें धूप में चुंधिया गई हैं और उसने कुछ का कुछ देख लिया। सबने उसके बात को हंसी में उड़ा दिया और चरवाहा इस पर झुंझला कर बोला कि आप मुझे झूठा समझते हैं, मेरी आंखों को जरा सा भी धोखा नहीं। आपको यकीन ना आए तो मैं काबे के पर्दे को थाम के ये बात कहता हूँ। और वो लोग उस वक्त किसको पूछते थे, हुबल और लात को, कि उसके मुकद्दस पैर छूकर कसम खाता हूँ कि ये बात सच में बिल्कुल सही है और मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है। इस पर एक बूढ़ा अरब कमान पर कोहनी का जोर देकर बोला कि हमारे खुदा लात और उज्जा गर्मी में जलते रहते हैं और उन पर बादल के किसी टुकड़े को साया फकन करने का कोई भी तौफीक नहीं होती है ना, और अब्दुल्ला के सर पे साया कर रहे हैं। तो वो जो था चरवाहा वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर और लौट गया, क्योंकि उसकी बात को किसी ने भी यकीन न किया। मक्का का माहौल कैसा था के बदकारियों का माहौल था और फहश गोई आम थी। बहुत ये हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत ज्यादा जो शेर और शायरी के अंदर ना बड़ी अजीब बातें की। और मगर अब्दुल्ला जो थे प्यारे नबी के वालिद, उनकी तबीयत का शुरू ही से पाकबाजी उनके अंदर थी और नेकोकारी की तरफ मैलान था। खाने काबे का तवाफ करते जो औरतें बरहना किया करती थी कभी उनकी तरफ नहीं देखा करते थे, और बल्कि उनको बुरा लगता था और आंखें बंद कर लेते थे जवानान कुरैश की रंगरलियों से उनकी तबीयत बहुत बेजार थी। उनके साथी उनको छेड़ते थे कि अब्दुल्ला तो चूड़ियां पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर घर में बैठ जाओ, जो तुम्हारी कोई जवानी खास जवानी नहीं है कि तुम इन सब चीजों से कतराते हो, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा था कि जो इन सब चीजों से भागता था उसको उसको है ना समझते थे कि इसके अंदर मर्दानगी ही नहीं है। फिर कहते थे कि अरे यही तो वक्त है, इसी वक्त में मजे कर लो, है ना। और फिर कहते थे आह बेचारे अब्दुल्ला तो ऐसे ही बिना लज्जतों के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और बेकैफ अपनी रातें और दिन गुजार रहे हैं। अब्दुल्ला एक दिन मक्का की एक गली से गुजर रहे थे, रास्ते पर गर्द पर ऊँटों के पैरों के निशान नजर आए, जैसे कि अभी अभी कुछ ऊँट गुजरे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला की आंखें इन निशानों पर जमी थी कि देखते हैं कि एक साइड में से एक मकान का दरवाजा खुला है और वहां पर एक जवान और खूबसूरत लड़की दरवाजे का पट खोले खड़ी है, और उस बड़ी खूबसूरत बहुत पुरकशिश वो लड़की थी। और फिर उस लड़की ने दावत गुनाह दी हजरत अब्दुल्ला को और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनको पयाम दिया, क्योंकि उस वक्त ये सब माहौल जो था ये गर्म था और इसमें किसी को भी कोई आर नहीं था। और फिर यह हुस्न ये जवानी की तरफ से पहल हो रही थी, रानाइयां खुद इकदाम कर रही थी, अब्दुल्ला के सीने में जवान दिल था गर्म वलवलों से दहकता हुआ। तो नफ्स ने उभारना चाहा, नफ्स ने, क्योंकि नफ्स जो है ऐसे माहौल के अंदर जब कोई रोक टोक भी नहीं, कोई गुनाह सवाब का कोई दिमाग में कुछ असरात भी नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं कि इससे गुनाह होगा या सवाब होगा, क्योंकि इस वक्त ये बातें सब कोई बात मायने नहीं रखती थी। और फिर इस हसीना की तरफ से जब है ना बुलावा आया, क्योंकि वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी कि उसको अरब के जो नौजवान लड़के थे वो बहुत पसंद करते थे, हर कोई उसको चाहता था कि हमारे साथ वक्त गुजारे। और वो किसकी तरफ बढ़ रही थी? वो हजरत अब्दुल्ला की तरफ बढ़ रही थी और वो चाहती थी कि वो मेरे पास आए और मेरे साथ वक्त गुजारें। और है ना उसको इतना गुरूर भी था, घमंड भी था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि ये मुझे कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर ऐसा होना था और ऐसा वो इरादा कर भी रहे थे कि मैं इस तरफ बढ़ूं, क्योंकि उनके नफ्स ने उनको उभारा था, लेकिन अंदर से हजरत अब्दुल्ला के जमीर ने एक चुटकी ली और शर्म और गैरत की रग को जो था उनकी वो उभरी और उसने ये कहा कि ये गलत है। और फिर हजरत अब्दुल्ला ने अपने कदमों को रोक लिया। इस बात पर वो लड़की बहुत ज्यादा झुंझलाई और उसको यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अब पढ़ूं और ये मुझको ठुकरा दें। फिर हजरत अब्दुल्ला से उसने जब इस बात के लिए इसरार किया तो हजरत अब्दुल्ला ने ये जवाब दिया कि ये फ़ाल हराम के इर्तकाब से तो मर जाना ही अच्छा है, हलाल को मैं बेशक पसंद करता हूँ मगर इसके लिए ऐलान जरूरी है। तुम बहकाती और फुसलाती हो लेकिन शरीफ आदमी पर अपने दीन और इफ्फत की हिफाजत लाजमी। लड़की देखती की देखती रह गई और हजरत अब्दुल्ला के नक्श कदम वहां बस वहां दिखाई दिए और फिर वो वहां से चले गए। सुभान अल्लाह, ये प्यारे नबी के जवानी के वाकया के आपको अरब की औरतें पसंद करती थी क्योंकि आप बहुत खूबसूरत थे और खूबसूरती के साथ साथ आपके अंदर एक कशिश बहुत ज्यादा थी। अब्दुल मनाफ के घराने में शिकार का गोश्त आया है, देगची चूल्हे पर चढ़ी है एक बूढ़ी औरत, लकड़ी के कवगीर से देगची के पानी को चला रही है, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, घर के लोग जमीन पर बैठे हैं और मिट्टी के बड़े बड़े प्याले इनके आगे रखे गए हैं। आपने अब्दुल मतलब के यहाँ क्या जवाब भिजवाया? एक अधेड़ उम्र अरब ने पूछा। मैं बिल्कुल रजामंद हूँ, बस जरा एक दो दिन में मेरे चचा नखला से आ जाएं, इनसे और मशवरा करूं। बड़े बूढ़ों के मशवरा अच्छा होता है, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ कि इस नेक काम में देर करना मुनासिब नहीं। अब्दुल मतलब के बेटे अब्दुल्ला के लिए मक्का में लड़कियों की कमी नहीं। लोग तमन्नाएं कर रहे हैं कि कैसे ही हमारी लड़की का अब्दुल्ला के साथ रिश्ता हो जाए। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग बातें कर रहे हैं? ये हजरत आमीना के घर वाले आपस में बातें कर रहे हैं। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला ने अपने आप को रोका, उनको एक बेहतरीन अल्लाह ताला ने जौजा का इंतजाम फरमा रहा है। इसका घराना कुरैश का सबसे मोहतरम घराना है। इसके बाप अब्दुल मतलब सैयदुल कुरैश हैं, और इनका ये शर्फ क्या कम है कि चाहे जमजम जिसे उमरो बिन हर्स जरहमी ने बंद करा दिया और किसी को याद भी न रहा कि यहाँ इस नाम का कोई कुआं भी था, अब्दुल मतलब ने अपने बेटे हारिस को लेकर उसको खोद निकाला। और इब्ने अम जल्दी करो, आमना की तकदीर के सितारे को जल्द चमकने दो। बात तय हो गई, अब्दुल मतलब के यहाँ जवाब भिजवा दिया गया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों तरफ खुशी होने लगी। अब्दुल्ला बाप के चहेते और जबी बेटे थे जिसकी शराफत और नेकोकारी की कुरैश कसम खाते थे, और हजरत बीबी आमिना अपने घराने की चश्मो चिराग थी। इफ्फत हया का मुजस्सिमा, पाकीजगी का पीकर, अरब की औरतें मेलों में बेबाकी के साथ शरीक होती। कुरैश की बज्म नाव नोश को गर्माती, मगर आमिना की जिबलत इन सब से जुदा और मुनफरद थी। वो अपने अजीजों से बात करते हुए भी शर्माती, सर से दुपट्टा ढलकने ना पाता। कुरैश की औरतें कहा करती थी कि आमना तू सचमुच गुड़िया है, बेजुबान, संजीदा और मतीन, दूसरी लड़कियों की तरह शोखियां इसे नहीं आती। आमीना के घर वाले इससे मोहब्बत ही नहीं बल्कि उनका एहतराम किया करते थे। अब्दुल मतलब अपने साथ रुसाए कुरैश को लेकर अब्दुल्लाह के ससुराल पहुंचे। लड़की वालों ने बारात का इस्तकबाल किया। लंबे लंबे कुर्ते, कमर से बटी हुई रस्सियां और हाथों में छोटी छोटी तलवारें। किसी किसी शख्स के कांधे पर यमनी चादर भी पड़ी थी, और किसी के कुर्ते के गिरेबान पर शाही कलायतों की कलाबतुओं के फूल भी बने हुए थे। बेटी वाले के घर में उस वक्त गाने बजाने का बहुत जोर शोर था, तो गाना बजाना हो रहा था और कुरैश की छोटी छोटी लड़कियां दफ पर गीत गा रही थी। इन गीतों में काबे की अजमत और कुरैश की नस्बी फखर और अबू कबीस की तारीफ और ऊँटों की रफाकत का जिक्र था, और किसी के शायर में कुरैश की नबंद आजमाई को भी सराहा गया कि कुरैश की तलवारों के जौहर लहू चाट कर चमकते हैं। उस वक्त जो गाने हुआ करते थे, तो जो बच्चियां गाने गाया करती थी वो बुजुर्गों की तारीफ किया करती थी, और इसी तरीके का माहौल उस वक्त वहां बना हुआ था। और लड़कियों के नगमे जो थे वो चाल हो रहे थे, अरब झूमे जा रहे थे, और इन जमजमों की बदौलत खुशी और दुबाला हो गई थी। नगमा मुसर्रत की तख्लीक करता है और इसके जेरो बमने से खुशी फूटती है। अरब के कदीम तरीके पर निकाह की रस्म अदा हुई और इंतहाई सादगी के साथ ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मतलब और आमिना बिनते वहब एक दूसरे के निकाह में आ गए। सुबहान अल्लाह, प्यारे नबी के वालदेन की ये निकाह की तकरीब थी। अब्दुल मतलब को लोगों ने मुबारकबाद दी। सैयदुल कुरैश ने इजहारे शुक्र के लिए आसमान की तरफ देखा। दो तकदीरों के सितारे मिल गए और दो जिंदगियां एक दूसरे की शरीक बन गईं। हजरत आमिना रुखसत होकर ससुराल आईं और खूब बेहतरीन तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और उनकी इज्जत की गई, क्योंकि वो एक ऐसी बेटी थी जो आम बेटियों से हटकर थी, जो अरब की आम लड़की आम माहौल से हटकर थी। और दुल्हा दुल्हन का ऐसा खुशनसीब जोड़ा कि आज तक देखने में ना आया। अब्दुल्ला आफताब थे तो आमिना महताब थी। दोनों नेक, शर्मीले, शराफत और गैरत के नमूने। एक दूसरे का जवाब, इसे छुपाओ और इसे निकालो। अब्दुल मतलब ने अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों को खाना खिलाया। बड़ी बड़ी बड़े बड़े देगचों में शोरबे पके और रिश्तेदारों और दोस्तों को खाना खिलाया गया। वहां के खास खाना जो सरीद कहलाता है, बड़े बड़े तबाकों में सरीद निकाला गया और कई कई अरब एक तबाक को लेकर बैठ गए और उनके आपस में हंसी मजाक शुरू हुए। अब्दुल मतलब ने अब्दुल्ला और दूसरे बेटों को साथ लेकर काबे के तवाफ किए और तवाफ शुक्राना अदा किया। इसमें मोहब्बत, अकीदत और दिली जोश भी शरीक था। काबे की मुंडेरों पर कबूतर भी खूबसूरत रक्स में थे। गोया तवाफ करने वालों का साथ दे रहे हैं, जबान हाल से कह रहे हैं कि हमें भी इस खुशी में हम बराबर की शरीक हैं। सुभान अल्लाह। ये था प्यारे नबी के वालदैन के निकाह की तकरीब। ये दोनों दोनों का आला खानदान था और दोनों ही पाकबाज थे। और कैसे माहौल के अंदर थे, यानी कि अरब का जो माहौल था उस वक्त बहुत उरूज पर था, बहुत गफलत में था। और ऐसे माहौल में आपके वालदेन बहुत बेहतरीन थे। और शादी हुए तकरीबन 2.5-3 महीने गुजर चुके हैं और हजरत अब्दुल्ला के मकान में एक है ना लश्कर तैयार हो रहा है। कजावे कसे जा रहे हैं ऊंटों के ऊपर और सत्तू की थैलियों के मुंह बंद हुए जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी अब्दुल्ला जी ने दूल्हा बने चंद दिन ही हुए हैं, शाम की तरफ तिजारत के लिए उनके जाने की तैयारी हो रही है। और फिर वहां का ये कायदा था अरब का कि जब कोई तिजारती काफले के लिए जाता था तो पूरे रिश्तेदार उसको अलविदा कहने के लिए जमा होते थे। और ये वो सफर था हजरत अब्दुल्लाह का जो बहुत ज्यादा जंगलों और पुरहोल बियाबानों और दुश्वार गुजार रास्तों से तय होकर जाने वाला था। या इब्ने मतलब मदीना से 6 मंजिल जाकर जो नखलिस्तान आता है वो खतरनाक है, वहां काफिले लुट जाया करते हैं। सुना है कि कबीला गफार के लुटेरों ने इधर कयामत मचा रखी है। होशियारी के साथ जाना। अब्दुल्ला ने इसका जवाब अपनी तलवार उठाकर देख कर दिया कि यही तलवार मेरी ऊन को जवाब देगी। इसका मतलब है कि वो बहादुर भी बहुत थे। हजरत अब्दुल्ला बहादुर भी बहुत थे। हाशमी घराने के लोग दिलेरी और शुजाअत में अपनी नजीर नहीं रखते, खतरे इनको डरा नहीं सकते। इनकी तलवारों ने बड़े बड़े खतरनाक मौकों पर खाने काबा की निगरानी की है। अब्दुल मतलब ने अब्दुल्लाह की पेशानी को चूमा, अब्दुल्लाह का सर नियाज से झुक गया और बेटे की कामयाब वापसी के लिए दुआ की। इसका मतलब कि वो फरमा बरदार भी थे। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप के फरमा बरदार बेटे भी थे। होठों के साथ सफेद दाढ़ी भी हिलने लगी। हजरत अब्बास ने नकेल पकड़ी और हमजा ने कजावे पर बैठते हुए मोहब्बत के साथ भाई का हाथ थामा और हजरत आमिना चुपचाप बुत की तरह एक तरफ को खड़ी हुई इस मंजर को देख रही थी। शौहर नहीं, इनकी तो दुनिया जा रही थी सनसान जंगलों की तरफ, जहां कोसों तक आबादी का नामो निशान नहीं मिलता था। वो अपना गम किससे कहती और किसको सुनाती, कहते हुए भी शर्माती। नई नई शादी और वैसे भी वो शर्मिली थी। इनका बस चलता तो कजावे उतरवा देती और अपने खाविंद को रोक लेती। ये तस्वीर कर सकते हैं उनके कोई नई नवेली दुल्हन, उनके शोहर अगर जाएं तो दुल्हन का क्या हाल होता होगा। यही हाल 3 माह की दुल्हन का हुआ जो प्यारे नबी की वालिदा मोहतरमा हैं और बाप जा रहे हैं काफिला लेकर और कमाने के लिए तिजारती काफिले की तरफ, है ना। तो उस वक्त हजरत आमिना के दिल की कैफियत का अंदाजा हम सिर्फ सोच सकते हैं। और कैसी कैसी कैफियत होगी वो। आमिना का दिमाग तसल्ली दे रहा था, ढारस बंधा रहा था कि इतनी मलूल क्यों होती है, तेरा शौहर तिजारती कारोबार के लिए शाम जा रहा है, जंग पर नहीं जा रहा, खैर खूबी के साथ वापस आ जाएगा। कुरैश आए दिन यमन, शाम, नजदा और मिस्र जाते ही रहते हैं। कुरैश की तो जिंदगी घोड़ों की पीठों पर और ऊंटों के कोहानों पर गुजरती है। 5-6 महीने की ही तो बात है, पलक झपकते गुजर जाएंगे ये दिन। वो अपने आप को तसल्लियां दे रही हैं और दे रही होंगी, है ना, कि आ जाएंगे। मगर इसका दिल आप यहाँ बैठा जा रहा था। कोई इनके कान में कह रहा था कि अब्दुल्ला को खूब जी भर के देख लो, फिर पता नहीं देखना नसीब हो। अब्दुल्ला ने भी दरो दीवार पर हसरत की निगाह डाली, जैसे कोई हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो। इनकी आंखों में अब्दी जुदाई झलक रही थी। देखने वाले महसूस कर रहे थे, कुरैश के घरानों से रोजाना लोग सफर पर जाते रहते हैं, लेकिन इस अंदाज में तो कोई रुखसत नहीं हुआ करता। जुदाई का ये मंजर और मुफारकत का ये समा ही अजीब सा है। रब काबा अब्दुल्लाह को आफियत के साथ वापस लाए। जिस तरह हम आज इसकी पीठ देख रहे हैं, कल इसका मुंह देखें। अब्दुल्ला जब मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, तो बाजार के मोड़ के पास कुछ औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी कि तुमने देखा कि ये जो सफर पर रवाना हो रहे हैं, ये कौन हैं? ये इनके बाप का नाम अब्दुल मतलब है। ये सैयदुल कुरैश के बेटे हैं, मुकद्दस काबा के दरबान। तो दूसरी ने कहा कि अरे नादान, इनके दादा का असली नाम आमिर है और उनका लकब शैबा है ना। यानी वो आपस में इनकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि है ना, छोटी सी बस्ती थी काबा, बहुत बड़ा नहीं था, और सब एक दूसरे से मिले जुले रहते थे। ये आज भी हम अगर बस्तियों में जाकर देखें तो हमको ये बात मिलती है कि अगर वहाँ एक छोटा सा भी कोई काम होता है तो सबको खबर हो जाती है। यही हाल उस वक्त काबा का था कि जब वहां ये काफिला जा रहा था तो आपस में उनके बारे में बातें हो रही थी, है ना। तो जबान ने एक दूसरे से कह रही थी कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शादी होने से पहले अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर नजर आता था, अब वो दिखाई नहीं देता। पेशानी में बस उसकी तजल्ली की झलकियां ही दिखाई देती हैं, जैसे कि सूरज छुपने के बाद और उसकी जो चोटियों किरणों का मुजमिल सी धारे छोड़ जाता है, वही रह जाता है, वही रह जाता है। तुम्हारी बात की मेरी निगाहें तस्दीक करती हैं। यानी दूसरी औरत कहती है कि हाँ ऐसा ही है। अब्दुल्ला के कान भी ये बात सुन रहे हैं, और फिर उन्होंने अपने काफिले को जो है हांकना शुरू किया और अपने काफिले को आगे बढ़ा ले गए। तो हजरत आमिना अपने घर की छत पर चढ़ती हैं और उस वक्त तक हजरत अब्दुल्ला के ऊँटों की कतार देखती रहती हैं, जब तक कि खजूरों के झुंड ये काफले छुपा नहीं देते। मक्का की पहाड़ियों ने इस धुलमुल के पर और हिजाब डाल दिए, और फिर वो छत से उदास और मगमूम जुदाई का गम लिए अपनी नम पलकों के साथ दामन से अपनी आंखों को साफ करते हुए नीचे उतर आती हैं, और उनकी निगाहों के नक्श आमना को दर दीवार पर नजर आते हैं, और फिर वो उतर कर वहां से अपने हुजरे में तशरीफ ले आती हैं, है ना। ये आज हमने दो बातें पढ़ी, एक तो निकाह की बात और फिर जुदाई की बात, यारे नबी के वालिदैन की जुदाई, है ना। अल्लाह ताला, क्योंकि काम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ले चुका था, जिस मकसद के लिए हजरत अब्दुल्ला को पैदा किया था, उनकी पेशानी में जो नूर डाला था, और हजरत आमना से जब निकाह फरमाया तो मकसद था नबी पाक की बासत का, और वो बासत का मकसद रब ताला ने पूरा फरमा दिया था। अब है ना, उनके वालदेन की जो थी इज्जत और एहतराम, वो यही था कि उनको दुनिया से उठा लिया जाए। वरना और भी उनके भाई लोग थे, हजरत अब्दुल्ला के 9 भाई बकाया थे, उनकी जिंदगियां नहीं खत्म हुई। और हजरत आमिना, उनकी जिंदगी भी बस जब तक नबी पाक 6 साल की उम्र में तशरीफ लाए तो उनको भी बुला लिया गया, है ना। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को बड़े ही हकीमाना तरीके से, बड़े ही बेशकीमत अंदाज से दुनिया में मबूस फरमाया। हम लोगों के लिए, हम लोगों को इस प्यारे प्यारे नबी की उम्मत में दाखिल करने के लिए, है ना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जब मिदहत बयान करने का जो ये मकसद है, ये भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम अपनी नई नस्ल तक पहुंचाएं, जैसे कि आज हमारे दिलों के अंदर है। हम भी प्यारे नबी की मिदहत को बयान कर रहे हैं, हम भी आपका जिक्र कर रहे हैं, हम भी आपके बारे में जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यही बात को हमको अपनी आने वाली नस्ल के अंदर दाखिल करना, मुंतकिल करना चाहिए, है ना। कि जब हम अपने घरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करेंगे तो हमारी नई नस्ल को मालूम होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। वरना बातिल तो चाहता यह है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग दूर हो जाएं। आज भी शैतान की चालों में ये चाल बहुत बड़ी है कि इनको दरूद पाक से दूर किया जाए, इनको नबी की मोहब्बत से दूर कर दिया जाए। वो हमारे सीनों के अंदर से, हमारी औलादों के सीनों के अंदर से, हमारी आने वाली नस्ल, जो छोटी नस्ल हैं, उनके अंदर से नबी पाक की मोहब्बत को निकालना चाहता है। और उसके लिए एक बेहतरीन तरीका उन लोगों ने ये मोबाइल फोन दे दिए, जो हर एक के हाथ में है। और किस तरीके से है कि क्या क्या देखते हैं बच्चे, और फिर सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। कुरान पाक सिखाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, और उसमें भी वालदैन इतने पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, वो लोग अहमियत ही नहीं देते। तो इसीलिए नहीं देते कि दिलों के अंदर नबी पाक की मोहब्बत निकालते निकाल दी जा रही है ना। तो हमारे वालदैन ने ही तो हमें बताया कि तुम नबी पाक के उम्मती हो, और हमारे सीनों के अंदर जो ये मोहब्बतें डाली हैं, ये हमारे पैदा होते ही, जब हम थोड़े समझदार होने हुए, पैदा होते ही कानों में अजान दे दी गई है ना, कि तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी के उम्मती हो और अल्लाह के बंदे हो। और फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें किससे पता लगा, हमारे वालदैन से, कि तुम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, आका हैं, आखिरी नबी हैं, और हमको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। और जब हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन जब हम कुरान ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो कैसे पता लगेगा कि प्यारे नबी से हमको कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। ये कुरान की और हदीसों की तरफ जो हमारे रुझान बहुत ना होने की बराबर हो गए, इसलिए हमको नबी पाक की इतनी मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं उबलती। तो ये बेहतरीन बात और ये विरसा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उनसे मोहब्बत अपनी नई नस्ल को हम क्यों ना दें। क्योंकि ये मोहब्बत हमने किससे सीखी, सहाबाओं से सीखी, सहाबियात से सीखी, उनके वाकयात पढ़कर सीखी। प्यारे नबी से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम और जानिसारी, क्योंकि यही तो दीन है, यही तो इस्लाम है, और यही तो ईमान है। और नबी रहमत की मोहब्बत नई नस्ल के अंदर पैदा करने के लिए हमें अपने बच्चों को दरूद पाक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आज हम अपने ऊपर गौर करें तो हमको असलियत सामने आ जाएगी कि हम अपने बच्चों को रोजाना एक तस्बीह दे देते हैं कि बेटे लो ये ना दरूद पढ़ लो। हम कितनी चीजें, हमने ना सुबह उठकर, अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो फजर सैफ के वक्त के फौरन बाद ही क्लासेस शुरू हो जाती हैं। माएं नमाज के लिए, फजर के लिए उठे ना उठे, बाप किसी और चीज के लिए कुछ करें ना करें, मोबाइल फोन लाके देना है, लो बेटे को दोस्त की क्लास का टाइम है, बेटी को दो, माएं उठ जाती हैं, लो तुम्हारी क्लास है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लास अटेंड करने के लिए अपनी माएं अपनी पूरी नींद को कुर्बान करके उनके साथ इतने ही घंटे बैठी हैं, 3 घंटे 4 घंटे तक बैठे हुए देखा है मैंने, और वो बराबर उनको काम करा रहे हैं कि नहीं तुम्हारी क्लास छूट जाएगी, तुम्हारी क्लास में तुम्हारा होमवर्क पीछे हो जाएगा। ये हम ये दुनिया की जो पढ़ाई को हम इतनी फोकियत दे रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, उसके लिए नींदे कुर्बान कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और वक्त को भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने प्यारे प्यारे आका की मोहब्बत अपने छोटे बच्चों बड़े बच्चों के दिलों में डाली है? हम खुद से ये सवाल करें कि क्या कभी एक तस्बीह पकड़ाई है उनको कि लो बैठो, या कुछ बीज इकट्ठे करके कि चलो आओ नबी पाक, हमारे नबी जिनके लिए हमको आखरत में, जिनका हमको साथ चाहिए, जो मौत के फौरन बाद हमको आपका साथ चाहिए, उनके लिए क्या हम इकट्ठा होकर कभी बैठ के अपने बच्चों को दरूद पाक पढ़वाया है? अगर पढ़वाया है तो किस लिए पढ़वाया है? ये काम हो जाए तो हमको इसलिए दरूद पढ़ना है, दुनिया का हमको ये चीज लेनी है हमारे लिए, ये वजीफा करना है तो हमको दरूद पाक पढ़ लें या हम ये वाला अमल कर लें। लेकिन अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो हमने अपने बच्चों के अपने खुद के दिलों के अंदर भी प्यारे प्यारे आका की मोहब्बत नहीं डाली, और ये इस काम को करने के लिए बातिल ने, शैतान जो है वो बहुत कामयाब हो रहा है कि इनके सीनों के अंदर से नबी पाक की मोहब्बत को निकाल के फेंक दे। ना इनके अंदर होगी तो ये अपनी औलादों को कैसे देंगे, जब ये खुद नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे देंगे? हम दरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन हम मोहब्बत में नहीं पढ़ते हैं। हमको प्यारे नबी से मोहब्बत की वजह से हमको दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि कुरान में हुक्म है, हदीसों में इसका हुक्म है ना? तो दरूद पाक पढ़ने की आदत हमको अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने से तबीयतों के अंदर निखार आ जाता है, तबीयतों के अंदर सुधार आ जाता है, निखार आ जाता है, और दरूद पाक से के पढ़ने की बरकत से दिलों के अंदर तकद्दुस पैदा हो जाता है, पाकीजगी पैदा हो जाती है, और दरूद पाक पढ़ने की बरकत से अंदर का जो बातिन है वो पाक होता है। किसको चोट लगती है जब दरूद पाक बंदा पढ़ता है ना, तो चोट किसको लगती है? चोट लगती है नफ्से अम्मारा को। नफ्से अम्मारा का एक कोड़ा अस्तग़फार के साथ साथ दरूद पाक भी है ना? और फिर दरूद पाक के पढ़ने की बरकत से किरदार में पाकीज़गी आ जाती है, और दरूद पाक पढ़ने की बरकत से मिजाज की सख्ती दूर हो जाती है, और फिर दरूद पाक पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहदीस मुबारका में फरमाया है कि जो कसरत के साथ मुझ पर दरूद पड़ेगा वो हश्र में मेरे सबसे ज्यादा नजदीक होगा, है ना? ये हमारी जरूरत है, और हम अपनी इस जरूरत से कितनी दूर हैं? हम अगर अपने आप से सवाल करें कि हक क्या है, तो हक की पहचान ये है कि जिसका हुक्म कुरान पाक के अंदर रब तआला ने खुद दिया है, और हदीस पाक के अंदर नबी पाक ने खुद फरमाया है कि तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल जब तक ना होगा, तुम्हारा ईमान ही कामिल जब तक ना होगा, जब तक के तुम मुझ पर दरूद ना पढ़ोगे, सलाम ना भेजोगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको ये फरमाया है कि जब मेरे नबी का नाम कोई ले तो फौरन वो यूं ही सुन के चुप ना हो जाए, बल्कि नाम सुनते ही फौरन दरूद भेजो, है ना? तो दरूद बड़ा भेजना एक मुश्किल काम था, तो सहाबाओं को जो प्यारे नबी ने ये तालीम फरमाई कि जब मेरा नाम कोई ले तो तुम फौरन दरूद पढ़ो, तो वो बड़ा दरूद पढ़ा करते थे। जो तालीम फरमाई थी दरूद इब्राहिम, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, फिर आसानी के लिए प्यारे नबी ने ये छोटा दरूद पाक बताया, ये छोटा दरूद पढ़ लिया करो जब मेरा नाम आए या लिखा जाए, और तुम पढ़ो या लिखो तो फौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा दरूद फौरन पढ़ लिया करो, है ना? तीन जगह लानत भेजी है ना अल्लाह पाक ने, अल्लाह के फरिश्ते ने बददुआ दी है और प्यारे नबी ने आमीन फरमाया है ना, है ना। कि जब आप पहले मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने फरमाया आमीन, फिर दूसरे मिंबर पे जब आपने कदम मुबारक रखा तब फरमाया आमीन, और फिर तीसरे मिंबर पर जब आपने कदम फरमाया तो फिर फरमाया कि आमीन। तो हाबाओं ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने 3 मरतबा आमीन किस लिए फरमाया है? तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि जब मैं पहले मिंबर पर कदम रख रहा था तो जिब्राईल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको वालदेन में से कोई एक भी मिल जाए बुढ़ापे के वक्त में उम्र में, और वो उसकी खिदमत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना कर ले तो वो हलाक हो जाए। तो मैंने उस पे आमीन कहा, और फिर दूसरे जब मैं मिंबर पे कदम रख रहा था तो जिब्राईल ने बद्दुआ दी कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजानुल मुबारक में जिंदा हो और रोजे ना रखे। तो मैंने उस पे आमीन कहा, और फिर तीसरे मिंबर पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्राइल ने बददुआ दी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और सुनने वाला दरूद ना भेजे वो भी हलाक हो जाए। और फिर मैंने कहा आमीन, है ना। क्या ये कोई मामूली बातें हैं, नजरअंदाज करने वाली बातें हैं? ये वो बातें हैं जो हमारा ईमान है, ये वो बातें हैं जो हमको मौत का को गले लगाते ही हमको इन सब के बारे में पता लग जाएगा, और इनके ना करने का जो वबाल होगा वो भुगतना पड़ेगा, वो सजाएं झेलनी पड़ेंगी, है ना। तो तमाम ईमान का निचोड़ जो है वो ये है कि नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी जात पाक पर दरूद पाक, है ना। वो काम क्यों ना किया जाए जो रब ताला करता है, हक ताला ये काम फरमा रहा है, और वो काम हम ना करें। बाकी कोई और काम रब ताला करता नहीं है, हुक्म देता है, वो ऑर्डर करता है, और अल्लाह अल्लाह ताला का वो काम अल्लाह खुद फरमा रहा है हमको भी करने का, है ना। और फिर उसमें हमारी निजात है ना। जैसे ही जुबान से दरूद पाक निकलता है तो सीधे हाथ की तरफ वाले जो लिखने वाले फरिश्ते हैं वो फौरन 10 नेकियां लिख देते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ बुराइयों को लिखने वाले फरिश्ते जुबान से निकलते ही 10 बुराइयों को, गुनाहों को मिटा देते हैं। उनको यह ऑर्डर मिला हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, और रब ताला 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। ये है वो काम, ये है वो दरूद पाक, ये है वो दुआ जो आका करीम से मोहब्बत पैदा करती है, और जबान से निकलते ही उसके तमाम काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। और दुआ तो या तो फौरन कबूल होती है, या फिर कुछ वक्त लग जाता है, या किसी चीज के बदले में कुछ और मिल जाती है, या बलाएं दूर हो जाती हैं, या आखिरत के लिए उठा के रख दी जाती हैं। लेकिन दरूद पाक पढ़ना तो जुबान से निकलते ही अपना काम शुरू कर देता है। और सलाम सिर्फ दरूद का ही हुक्म नहीं दिया है ना, दरूद ये दुआ है, सलाम सलाम है, सलात एक अलग चीज है। हमको ये सब बातें समझनी ही चाहिए, है ना, हमको ये बहुत जरूरी है। और नमाज के अंदर भी सलात उस सलाम का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक की अहमियत को बताया है ना। अत्तहियात सलाम है और दरूद पाक तो दरूद पाक है। तो ये हमको बहुत गौर व फिक्र की तरफ हमको ये सब ले जाती है, खुद हमारी नमाज हमको सिखाती है अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया, है ना। तो हमको इसको अपने अंदर उतारना है, और ये जो दिन चल रहे हैं, मुबारक दिन, बेशकीमत दिन, इन दिनों को हमको پیارے نبی کی مدحت میں ہی گزارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. یوں تو ہم کو پوری زندگی پیارے نبی کی مدحت کرنی ہے اور الحمدللہ ہم لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے رمضان المبارک اللہ میسر فرماتا ہے تو قرآن پاک اس رمضان المبارک میں اترا ہے تو کتنی زیادہ اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے جب کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کوئی آتا ہے، جیسے محرم آتے ہیں تو تذکرہ حسین زباں پر آ جاتے ہیں، تو اس میں یہ بہت بڑا سانحہ ہوا. حج کا مہینہ ذلحج آتا ہے تو ذلقعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے حج کے بارے میں زور شور سے جاننا کہ ان مہینوں میں یہ ہوا تھا، ہے نا، ان مہینوں میں یہ ہوا تھا. تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم از سر نو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حج کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کیوں ہم پر ہے نا، کیوں ہوئے اور حج کے اراکین ہیں کیا، ہے نا. تو ان کو ہم سب تازہ کرتے ہیں. اور پیارے نبی کا یہ مہینہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا روشن ہوئی، تو اس مہینے میں ہم کو کتنا تذکرہ کرنا چاہیے، کتنا ذکر کرنا چاہیے اور کتنی اپنے گھروں کے اندر محفلیں سجانی چاہیے پیارے نبی کی شان میں، ہے نا. اسی بات پہ کیوں اعتراضات ہوتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں کرنے کا. نبی پاک کی جو ذکر کیا جائے تو کیا اس میں اعتراض کا جواز نکلتا ہے؟ امتی کے لبوں پر تو ہر وقت اپنے آقا کا ہی ذکر ہونا چاہیے. ہماری تو پہچان ہی نبی پاک ہے، ہمارا تو مسلمان ہونا ہی پیارے نبی کی ہی دین ہے. تو انشاءاللہ سم انشاءاللہ ہم اپنے لبوں کو، دلوں کو ہم درود پاک سے سجاتے رہیں گے، تر رکھتے رہیں گے، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، ہے نا. بس انشاءاللہ آج اتنا ہی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب لوگ بہترین درود شریف پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، جمعرات کے دن ہم اکٹھا کریں گے اور پھر ہم پیارے پیارے آقا کی حضور پیش کریں گے اور اپنے لیے ہم رحمتوں کے دروازے کھلوائیں گے اور گناہ مٹا دیے جائیں گے ہمارے، کیونکہ ماشاءاللہ کتنا پڑھا جا رہا ہے نا، تو گناہ بھی مٹیں گے اور ہے نا ثواب لکھے جائیں گے، نیکیاں بڑھا دی جائیں گی اور اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بڑھا دے گا ہمارے نامائے اعمال کے اندر. چلیے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کے لیے